नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है और आज आपके साथ मैं हूं विनय सक्सेना। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्य समाचारों से। आईपीएल में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से हो रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 हॉकी मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5-1 से हरा दिया। कजाकिस्तान इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में अनुपमा उपाध्याय और थारून मन्नेपल्ली ने महिला और पुरुष सिंगल्स के खिताब अपने नाम किए और भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बना ली है। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच खेला जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 13 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 115 रन बना लिए हैं। कल मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 3:30 बजे और लखनऊ सुपर जॉइंट्स और गुजरात टाइटन्स के बीच शाम 7:30 बजे मैच खेले जाएंगे। मनोज जी, कितना स्कोर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का होना चाहिए?
देखिए, होना तो चाहिए, मैं तो चाहूंगा कि 200 रन बने, लेकिन जिस रफ्तार से खेल रहे हैं, जिस तरह से रन बॉल खेल रहे हैं, जिस तरह गेंदबाजों ने बांधकर रखा हुआ है, खासकर स्पिनर्स ने, अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी की है, उससे मुझे लगता है ये स्कोर 170 के ऊपर चला जाए, बड़ा आश्चर्य होगा मुझे। 170-175 के आसपास बस
इतना, जबकि चेज तो 200 से ऊपर भी हो रहा है।
200 से ऊपर भी चेज हो रहा है, लेकिन वही बात है कि गेंदबाजी बहुत अच्छी है और विराट कोहली ने अब एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपने बताया, 13 ओवर का स्कोर, इससे पहले वो बिल्कुल रन बॉल वाले अंदाज में खेल रहे थे। ये भारतीय खिलाड़ियों के साथ एक तरह का, ये मैं कहूंगा, ऑडिशन है T20 वर्ल्ड कप का, क्योंकि यहां अगर आप एक्सेलरेट करते करते अगर आप आउट हो जाते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। यही हम ऋषभ पंत के साथ देख रहे हैं, यही हम विराट के साथ देख रहे हैं, जितने भारतीय खिलाड़ी हैं ज्यादातर के साथ अभी तक यही समस्या रही है कि वो जो है एक्सेलरेट करते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर जाता है, और एक्सेलरेट करते करते अगर वो आउट हो जाते हैं तो बिल्कुल वो वनडे वाले स्कोर में, यानी रन बॉल वाले अंदाज में आउट हो जाते हैं।
अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि राजस्थान रॉयल्स टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में तो अच्छा करती है, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है राजस्थान रॉयल्स फॉल्टर करने लगती है।
लेकिन मुझे लगता है शायद इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि रियान पराग एक ऐसा खिलाड़ी जिस पर बहुत ज्यादा दाव लगाया गया था, बहुत ज्यादा भरोसा किया गया था, इस भरोसे पर वो अब जाकर खड़े उतरे हैं, हर मैच में चल रहे हैं और ऑरेंज कैप के वो प्रबल दावेदार हैं, और विराट कोहली के साथ उनकी जो टक्कर चल रही है इस समय ऑरेंज कैप को लेकर, तो मुझे लगता है कि इस बार शायद वो ना हो जैसा पहले होता रहा है। जी,
ऑरेंज कैप तो अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का चौथा मुकाबला है, पांचवां, और राजस्थान रॉयल का है चौथा।
ऑरेंज कैप की जो होड़ चल रही है ना, अभी जितने मैच हुए हैं सबसे ज्यादा रन जो देखे जाते हैं हर मैच के समाप्ति के बाद, उसमें विराट कोहली अभी सबसे आगे हैं, तो रियान पराग दूसरे नंबर पर हैं। क्योंकि पराग को हमने, मेरा इंटरेस्ट उसमें व्यक्तिगत तौर पर इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी हो, रणजी ट्रॉफी हो, रनों का अंबार लगा दिया है, खूब रन बनाए हैं उन्होंने, तो ऐसा खिलाड़ी अगर यहां भी चलता है तो फिर उनको देखना बहुत अच्छा लगता है।
अब जैसे आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का पांचवां मैच है और राजस्थान रॉयल्स का चौथा मैच है, तो जो एक मैच की एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, ये कहां आगे जाके टूर्नामेंट में दोनों टीमों को नुकसान या फायदा पहुंचाएगी?
देखिए, बेसिक चीज ये है कि आप दो देखिए, सारी टीमें प्रोफेशनल हैं और मुझे लगता है कि यहां से अगर आरसीबी अपनी गेंदबाजी पर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी रही है लेकिन अभी तक वो वैसा पराक्रम देखने को नहीं मिला। एक या दो प्लेयर चलते हैं, टॉप ऑर्डर चल ही नहीं पा रहा आरसीबी का, या तो आप देखिए लोमरोड चलते हैं 6-7 नंबर पे, या फिर दिनेश कार्तिक चलते हैं, कभी अनुज रावत चलते हैं, तो
आज विराट कोहली चल गए।
विराट कोहली कंसिस्टेंट है, उनको छोड़कर जो है बाकी टॉप ऑर्डर उतना नहीं चल पा रहा जैसे आज फाफ डू प्लेसी चले हैं। तो ये दोनों ही मतलब अपने हिसाब से वन मैन आर्मी बन सकते हैं इस टीम की, और यहां से अगर बड़ा स्कोर 175-180 तक पहुंच गए अगर, और उसके बाद गेंदबाजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि गेंदबाजी अभी तक उतनी लय में दिखाई नहीं दी है। अगर आप पुराना इतिहास भी देख लेंगे, वहां भी ये लोग मात खाते हैं आरसीबी वाले, तो सिर्फ अपनी गेंदबाजी से खाते हैं।
कल होने वाला मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल का है, दोनों में होड़ है कि सबसे लास्ट में या उससे पहले कौन रहेगा?
देखिए, पांच मैच पहले हारने के बाद भी ये टीम प्लेऑफ में पहुंची है, मुंबई इंडियंस की मैं बात कर रहा हूं, और तीन मैच हारने के बाद चैंपियन भी बनी है। तो मैं यही कहूंगा कि मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं अभी निराश ना हो। अब सूर्य कुमार यादव भी आ गए हैं जो दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज हैं, तो मुझे लगता है अब शायद ऐसा ना हो, लेकिन आज गेंदबाजों को दुरुस्त होना होगा। जो कोइजी पिछली बार बहुत खतरनाक साबित हो रहे थे, इस बार बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। अभी ले देकर बुमराह ही ऐसा लगता है कि वन मैन अटैक है, क्योंकि स्पिन बॉलिंग के तौर पर भी उतने ऑप्शंस नहीं है, जितने ऑप्शंस हैं वो बहुत अच्छा कर नहीं पा रहे हैं।
और कल एक और मुकाबला भी है, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, दोनों ने पिछली बार बहुत अच्छा किया था, इस बार दोनों बिल्कुल मिडिल ऑफ द टेबल चल रहे हैं।
देखिए, गेंदबाजी बहुत इम्प्रूव हुई है, बहुत बैलेंस टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, और अभी तक चौथे नंबर पर चल भी रही है। और मयंक यादव एक मैं कहूंगा नया
सितारा बन के उभर रहे हैं,
सितारा बनकर उभरे हैं, और नया भीरा के मैं कहूंगा उनको इस टूर्नामेंट की खोज कहूंगा, जो 155 की रफ्तार दो बार पार कर चुके हैं, और 150 तो मतलब अब उनके लिए बहुत आम बात हो गई है। और जिस तरह से वो बाउंसर फेंकते हैं, जिस तरह से सटीक बाउंसर उनकी जो रिलीज पॉइंट है बिल्कुल बल्लेबाज की तरफ होता है, जिससे उनकी बाउंसर बहुत खतरनाक होती है। और उसके अलावा अभी वाइट यॉर्कर उन्होंने नहीं किया, मैंने तो उनको रोहतक राउट जिमखाना में भी देखा, उनको मैंने सोनेट क्लब में भी देखा बॉलिंग करते हुए। वाइट यॉर्कर अभी जब मौका मिलेगा, क्योंकि अभी उनको पता है कि प्लान ए उनका चल रहा है, प्लान बी पे जाने की जरूरत
नहीं है। और पत्ते क्यों खोलने हैं,
पत्ते क्यों खोलने हैं, बिल्कुल सही कहा आपने।
आइए श्रोताओं, बात करते हैं हॉकी की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच हॉकी मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पर्थ में खेला गया। आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5-1 से हरा दिया। इस श्रृंखला का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक की तैयारी के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच श्रृंखला खेली जा रही है। एक रिपोर्ट।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम से उम्मीद की जा रही थी कि वह ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को कड़ी चुनौती देगी, लेकिन आज यहां पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला और मेहमान टीम को 1-5 से करारी हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खेल शुरू होने से लेकर आखिर तक दबदबा बनाए रखा। भारतीय टीम ने अंतिम क्वार्टर में कुछ अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टॉम विकम ने 20वें और 38वें मिनट में 2 गोल किए, जबकि टिम ब्रान, जॉयल रंटाला और फ्लिन ओगिलवी ने 1-1 गोल किया। भारत के लिए एकमात्र गोल गुरजंत सिंह ने 47वें मिनट में किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खेल शुरू होते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे और उसने 3रे मिनट में ही पहला गोल कर दिया। भारतीय रक्षा पंक्ति की गलती के कारण ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे क्वार्टर के 5वें मिनट में अपनी बढ़त 2-0 कर दी और हाफ टाइम तक इसे बरकरार रखा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे हाफ में भी अपना आक्रामक रवैया जारी रखा। 3रे क्वार्टर के 7वें मिनट में रिंटाला ने काई विलोट के रिवर्स हिट को डिफ्लेक्ट करके गोल किया। विकम ने इसके तुरंत बाद दाएं कॉर्नर से करारा शॉट लगाकर अपना दूसरा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चौथा गोल किया। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे क्वार्टर के शुरू में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाया। भारत ने इसके तुरंत बाद जवाबी हमला किया और मोहम्मद रहील को पास कर गुरजंत गोल करने में सफल रहे। ऑस्ट्रेलिया ने खेल समाप्त होने से 3 मिनट पहले पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, जिसे ओगिलवी ने गोल में बदला। स्पोर्ट्स कैन की टीम के साथ मैं सरफिरोजी।
मनोज जी, पहला मैच हम 5-1 से हार गए इस सीरीज का, और ये सीरीज ओलंपिक की तैयारी को देखते हुए ली गई है, तो पहले तो ये बताइए कि सीरीज का नतीजा क्या देखते हैं, क्या भारत के पक्ष में हो पाएगा?
देखिए, बहुत मुश्किल है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, और आपने ओलंपिक का जिक्र किया, ओलंपिक में भी दोनों
एक ही ग्रुप में है, एक ही ग्रुप में है,
तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन जो आज तेज तर्रार हॉकी खेली है उन्होंने, और जिस तरह से पास, शॉर्ट पास और साथ में लॉन्ग पासेस दोनों का बहुत अच्छा तालमेल, और उसके अलावा जो खाली स्थान पर गेंद को फेंकना और उसके बाद तेज रफ्तार से गेंद पर झपटना, मुझे लगता है यहां पर हमसे चूक हो गई। हम लोग वो हमारी रफ्तार देखने को नहीं मिली, और हार्दिक को अभी रेस्ट दिया गया था, उसका भी एक इम्पैक्ट दिखाई दिया। मनप्रीत हो, ललित उपाध्याय हो, कृष्ण पाठक हो अपने गोलकीपर, या शिरजेश हो, आज थोड़े से मुझे ऑफ कलर दिखाई दिए, बिलो पार उनका परफॉर्मेंस रहा है। और वैसे भी मैंने देखा, जब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे सामने आती है, हमने जर्मनी को भी हम हराते हैं, हॉलैंड को भी हराते हैं, हमने प्रो लीग में भी देखा, लेकिन जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक हो या फिर अन्य आयोजन हो, कॉमनवेल्थ गेम गेम्स का आप फाइनली क्यों ना देख लें। वो भारत बुरी तरह से एक तरह से हथियार भारत ने डाले हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, लेकिन वो तब है जबकि भारत बहुत अच्छी हॉकी खेल रहा था, तब ऑस्ट्रेलिया के सामने हमारी एक नहीं चली, और यहां पर क्योंकि ओलंपिक की तैयारियां हैं, एक्सपोज ना हो और यहां एक अच्छा कॉम्बिनेशन बने और चोटिल ना हो खिलाड़ी, इस पर भी खिलाड़ी ज्यादा ध्यान देते हैं। और यूरोपियन टूर्स में अक्सर ऐसा देखा गया है, यूरोपियन टूर्स हो या ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो, जो भी ओलंपिक से पहले, उस पर अपना जो है मतलब इंजरी से बचना बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, मैं समझता हूं।
तो इस सीरीज से हम कुछ सीख पाएंगे और अच्छा प्रदर्शन रहेगा हमारा, ऐसी उम्मीद?
देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया से अगर हम उनको देखें और उनकी अपनी कमजोरियों को देखें,
ओलंपिक के मद्देनजर,
बिल्कुल जी बिल्कुल, रविवार का दिन है, संडे सुपर संडे बन जाए हमारा और हम जीतें तो मनोबल बढ़ेगा भारतीय टीम का।
आइए बात करते हैं बैडमिंटन की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय और थारून मन्नेपल्ली ने आज कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज टूर्नामेंट में महिला और पुरुष एकल खिताब अपने नाम किए। अनुपमा ने फाइनल में 41 मिनट में ईशारानी बरुआ पर 21-15, 21-16 से जीत दर्ज कर लगातार दूसरा खिताब हासिल किया। वहीं पिछले साल दिसंबर में गुवाहाटी में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उपविजेता रहे थारून ने 8वीं वरीयता प्राप्त मलेशिया के सुंगजू वेन को 21-10, 21-19 से हराकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। मिश्रित युगल के फाइनल में भारत के संजय श्रीवत्स, धनराज और मनीषा की जोड़ी को मलेशिया के वोंग टीएनसी और लिन चिव सीएन की जोड़ी से 21-9, 7, 21-12, 21 से हार का सामना करना पड़ा। भविष्य कैसा देखते हैं बैडमिंटन में?
बहुत उज्जवल भविष्य है जी। अभी ये तो जो दो खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया है, ये दोनों 19 साल के हैं और जिस तरह से अनुपमा ने पोलिश चैलेंजर टूर्नामेंट जीता था पिछले महीने और यहां पर एक और खिताब अपनी झोली में डाला है, उससे आगे के लिए बहुत उम्मीदें जग गई हैं। और क्योंकि अब पीवी सिंधु को भी हम देख रहे हैं, काफी समय से काफी उतार पर दिखाई दे रही हैं, थोड़ी इंजरी इशू भी है उनके साथ। और वहीं दूसरा आपने थारून मन्नेपल्ली का जिक्र किया, ये खिलाड़ी नेशनल चैंपियन नहीं बन पाया था, रनर्स अप था नेशनल चैंपियनशिप का, और वहां से आप इंटरनेशनल में जाते हैं, मलेशिया जो कि एक बहुत बड़ी शक्ति माना जाता है बैडमिंटन की, उस मलेशियाई खिलाड़ी को हराते हैं जूनियर लेवल पर ही, यानी 19 साल की उम्र में ही, और खिताब जीतते हैं, तो इसके मायने काफी हैं, मैं समझता हूं।
अब बात करते हैं शतरंज की। भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती ने यहां कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के दूसरे दौर में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी अमेरिका के हिकारू नाकामुरा की सभी रणनीतियों को नाकाम करते हुए जीत हासिल की, जबकि आर प्रगनंदा को भारत के ही डी गुकेश से हार झेलनी पड़ी। पहले दौर में 4 ड्रॉ के बाद शनिवार को दूसरे दौर की सभी 4 बाजियों में नतीजे निकले। महिला वर्ग में आर वैशाली को चीन की झोंगी टेन से हार मिली, जबकि कोनेरू हम्पी ने रूस की कैटरीना लेग्नो से बाजी ड्रॉ कराई। अभी 12 दौर खेले जाने हैं, जिससे अगले विश्व चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंजर तय होगा। अब बात करते हैं टेनिस की। भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स में जीत से शुरुआत करते हुए शनिवार को यहां आज क्वालिफायर में इटली के फ्लेवियो कोबोली को सीधे सेटों में शिकस्त दी। सुमित नागल ने कोबोली पर 6-2, 6-3 से जीत दर्ज की। नागल अब अपने अंतिम क्वालिफायर मैच में अर्जेंटीना के दो खिलाड़ियों फाकुडो डियाज अकोस्टा और डिएगो श्वार्ट्जमैन के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से भिड़ेंगे। भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन की दुनिया की नंबर एक जोड़ी भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। सुमित नागल क्या भविष्य है भारतीय टेनिस का?
जी हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें तो अभी पीछे एक टूर्नामेंट हुआ था जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, उसमें दूसरे राउंड तक पहुंचे थे, ओलंपिक में दूसरे राउंड तक पहुंचे, और टेनिस में अगर कोई सिंगल्स के अंदर कोई प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्मेंस करता है ग्रैंड स्लैम जैसे एक कॉम्पिटेटिव उसमें प्रतिस्पर्धा में, वो शानदार प्रदर्शन करता है। और यहां पर जिस तरह से आपने बताया अभी, ये एक उलटफेर था क्योंकि 8वें सीडेड खिलाड़ी थे जिनको उन्होंने हराया है और रैंकिंग में भी उनसे बहुत ऊपर
थे,
तो 63वीं रैंकिंग थी इस खिलाड़ी की। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा भविष्य अगर यंगस्टर्स में देखेंगे तो सुमित नागल जरूर हैं।
भारत की यूकी भांभरी और फ्रांस के उनके जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी यहां एटीपी मराकेश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में ऑस्ट्रिया के लुकास मीडलर और अलेक्जेंडर एरलर की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से 5-7, 6-3, 7-10 से हारकर बाहर हो गए। भारतीय गोल्फर तोयसा मलिक ने दक्षिण अफ्रीका में अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए एब्सा लेडीज आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट के दूसरे दौर में भी इवन पार 72 का कार्ड खेला, जिससे वो संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे और ताजा खेल खबरों के साथ मिलेंगे। मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को, नमस्कार।